आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक संपन्न हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को लेकर दोनों देशों के समझौते पर पहुंचने के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच ये पिछले 5 वर्षों में होने वाली पहली औपचारिक बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सदस्य देशों से संगठित होकर आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने वालों के साथ सख्ती से निपटने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को कट्टर बनाने वाली ताकतों को रोकने के लिए सक्रियता से काम करना होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते के मुद्दे पर काम करने का आह्वान किया। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विश्व की 40% जनसंख्या और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में संगठन ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने तेजी से संपर्क बढ़ाने के लिए गति शक्ति पोर्टल शुरू किया है।
भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गतिशक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है।
जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कल 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। श्री शोल्ज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज शुक्रवार को अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है। इसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम के पराली जलाने पर सजा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ये अधिनियम कानून के पालन के लिए अपेक्षित तंत्र बनाए बिना लागू किया गया। केंद्र सरकार ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर नियम तय कर लिए जाएंगे और अधिनियम को पूरी तरह प्रभावी किया जाएगा। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के तक ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों भितरकनिका और धामरा के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस बीच भारतीय तटरक्षक बलों ने चक्रवात दाना से पहले जानमाल के नुकसान से बचने के लिए व्यापक प्रबंध कर लिए हैं। चक्रवात के कारण किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां की गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जहाजों, विमानों और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों को मछुआरों और नाविकों को मौसम की चेतावनी और सुरक्षा सलाह देने का काम किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा शाही ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अपने पिछले आदेश को रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने पिछले आदेश में इस विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने को कहा था। अर्जी में कहा गया था कि विवाद से जुड़े सभी 18 मामलों पर एक साथ सुनवाई करने के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि हर एक मामले का कानूनी आधार अलग है और अलग अलग राहत मांगी गई है। जर्मनी हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 2-0 से हरा दिया है। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर मलेशिया में सुल्तान जोहर कप में जूनियर भारतीय हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से हरा दिया है। भारत पहले मैच में जीतकर अंक तालिका में 9 अंकों के साथ अभी शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।